नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जनमेजय ने पूछा, हे वेशमपायन जी, अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि कौरव और पांडव सोमक तथा नाना देश से आए हुए अन्यान्य राजाओं ने युद्ध की किस प्रकार से तैयारियां करने के बाद युद्ध का शुभारंभ किया, क्योंकि सब कुरुक्षेत्र में आ गए। दोनों सेनाओं को निश्चय हो गया अब युद्ध तो किसी प्रकार टल नहीं सकता है, सब डट गए। अब कैसे युद्ध हुआ ये बताइए। वैशंपायन जी बोलते हैं कि सुनो, कौरव पांडव और सोमवंशी वीरों ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया वो बहुत सुनने लायक है। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां समंत पंचक तीर्थ से बाहर के मैदान में हजारों शिविर डाल दिए थे। वहां इतनी सेना इकट्ठी हो गई कि कुरुक्षेत्र के सिवाय सारी पृथ्वी सुनी सुनी लगती थी। केवल बालक और बूढ़े बच गए थे। तरुण पुरुष और घोड़ों का कहीं किसी देश में नाम नहीं था। रथ और हाथी सुनने में ही आते नहीं, वहां देखने में आते ही नहीं थे। पृथ्वी के सब देशों से सेना में जो भी कोई सैनिक और कुरुक्षेत्र में चला गया, सभी वर्णों के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। सब ने अनेकों योजन के मंडल में घेराव डाला। उनके घेरे में देश, नदी, पर्वत, वन जो वहां थे सब आ गए। राजा युधिष्ठिर ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था। युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहला ये काम किया कि हमारी सेना का कौन सैनिक है, इसके पहचान के लिए उन्होंने एक ऐसा संकेत का सोने का आभूषण बनाया जिसमें उस व्यक्ति का नाम था और वो पैदल सैनिक है कि रथ का सैनिक है कि हाथी का सैनिक है, ये उसके ऊपर संकेत दिया हुआ था, आइडेंटिटी कार्ड। दुर्योधन ने समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में व्यूह रचना की। युद्ध का खूब अभिनंदन करने वाले पांचाल देशीय वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े बड़े उन्होंने शंख और रण भेरियां बजाई। उनके मन में ये आया कि अब दुर्योधन का नाश होगा। तदनंतर एक रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान के पास पांचजन्य शंख था और देवदत्त नाम का शंख अर्जुन के पास था। दोनों की भयंकर आवाज सुनकर के कौरव योद्धाओं के मलमूत्र निकल गए। इसके बाद कौरव पांडव और सोमवंशी वीरों ने मिलकर के युद्ध के कुछ नियम बनाए। उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया। वो नियम क्या थे वो बताते हैं। प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले के भांति आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। युद्ध के बाद किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करेगा। जो वाग युद्ध कर रहे हो, आपस में खूब वाणी से बोलते हो, कटु बोलते हो, वो मुकाबला वाग युद्ध केवल युद्ध में ही किया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद कोई किसी को किसी प्रकार कटु शब्दों से नहीं बोलेगा। जो आदमी जो सैनिक सेना से बाहर निकल गए हों उसको कोई नहीं मारेगा। रथ वाला रथ वाले के साथ युद्ध करेगा, हाथी का सवार हाथी वाले के साथ करेगा, घुड़सवार घुड़सवार के साथ करेगा, पैदल पैदल के साथ युद्ध करेगा। ऐसा नहीं कि हाथी वाला पैदल वालों के बीच में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। वो बेचारे पैदल है, वो हाथी यूं जाके मार देगा, ये नहीं होगा। जो जिसके योग्य हो उसके साथ युद्ध करेगा, अपने से बहुत कमजोर योद्धा है उसके साथ युद्ध नहीं करेगा। जिसका जैसा उत्साह और बल हो उसके अनुसार लड़ेंगे। जब भी कोई किसी को बाण मारेगा तो पहले उसको सावधान करना पड़ेगा, सावधान दुर्योधन ऐसे बोलना पड़ेगा। जिस आदमी को आवाज सुनाई नहीं दी हो, सावधान नहीं हुआ हो, जो बेखबर हो, जो भयभीत हो गया हो, उसके कोई बाण नहीं मारेगा। जो कोई किसी के साथ युद्ध कर रहा हो उसको उसी तक सीमित रखो, दूसरा आकर अकस्मात शस्त्र नहीं छोड़ेगा। जो कोई प्रतिपक्षी योद्धा शरण में आ जाए, कैसा मैं आपकी शरण में हूं, उसको कोई बाण नहीं मारेगा। जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हो, कवच नष्ट हो गया हो, नियत्था हो गया हो, उसका कोई वध नहीं करेगा। युद्ध भूमि में जो सारथी होता है, जो भार ढोने वाले होते हैं, जो सैनिकों को शस्त्र पहुंचाने वाले होते हैं और जो लाश उठाने वाले होते हैं, उनको किसी प्रकार कोई नहीं मारेगा। ऐसे वहां नियम बनाए, सभी लोगों ने नियमों का पालन किया। पालन करने के लिए सहमति प्रदान की, पालन क्या किया तो लड़ेंगे तब होगा। सहमति प्रदान की, हाँ हमको ये नियम स्वीकार है। तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भगवान वेदव्यास ने एकांत में बैठे हुए धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, राजन अब तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का काल आ गया है। वे युद्ध में एक दूसरे का संहार करने के लिए तैयार हैं। बेटा यदि तुम इन्हें संग्राम में देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे दूं, इससे तुम वहां का युद्ध यहां बैठे बैठे दूर से ही देख लोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे ब्रह्मर्षिवर, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को जो मेरी कभी गोद में बैठते थे उस अवस्था में उनको नहीं देखा। जो बड़े होकर आपस में बड़े प्रेम से मेरे पास आते थे, प्रणाम करते थे, मैं उनके सिर पर हाथ रखता था, उस अवस्था में भी मैंने आंखों से नहीं देखा। इन सब बच्चों का विवाह हो गया, उस अवस्था में मैंने इनको नहीं देखा। मैंने अपने पौत्रों को गोदी में बैठते देखा, लेकिन फिर भी सकल सूरत नहीं देखी। अब मैं इस कुटुंब का नाश देखने के लिए आपसे दिव्य दृष्टि पाकर कौन सा अच्छा काम करूंगा। परंतु एक निवेदन है, आपके प्रभाव से मैं युद्ध का पूरा समाचार सुनता रहूं, ऐसी कोई व्यवस्था बना दीजिए। हे जन्मेजय, धृतराष्ट्र युद्ध का समाचार सुनना चाहता था। उसके मन में यही बात थी, मेरे पुत्र कैसा युद्ध करते हैं, मेरे पुत्र पांडवों को कैसे मारेंगे, मेरे पुत्र भीष्म द्रोण को अपनी सहायता में लेकर कितना बड़ा राज्य और विस्तृत कर लेंगे। भीतर में इस लालसा से उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं युद्ध का समाचार सुनना चाहता हूं। व्यास जी ने सिर हिलाकर मुस्कुराकर धृतराष्ट्र की अंदर की भावना को समझ लिया और सोचा कि जब ये मेरे मांगने पर मांग ही चुका है तो कहा कि देखो धृतराष्ट्र, मैं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, ये तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो संजय से छिपी रहेगी। मेरी दी हुई इस दिव्य दृष्टि से ये सर्वज्ञ हो जाएगा, लोगों के मन की बात भी जान लेगा। कोई सामने हो या पीछे हो, दिन में हो रात में हो, मन में सोची हुई क्यों न हो, सब बात संजय को मालूम हो जाएगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा तथा वह इस युद्ध में जीता जागता निकल जाएगा। संजय, मैं इन कौरवों और पांडवों की कीर्ति का विस्तार करूंगा, तुम इसके लिए शोक मत करना। ये भाग्य का विधान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। धृतराष्ट्र, मैं तो युद्ध के द्वारा भी इनका हित ही चाहता हूं। युद्ध में जो धर्म का आचरण करने वाला होगा उसकी जीत होगी, और जिसने अन्याय, कुटिलता, द्वेष और पक्षपात किया है वो इस युद्ध के अंदर किसी प्रकार जीवित नहीं रहेगा। सुनते ही धृतराष्ट्र ने अपना सिर नीचा कर लिया। व्यास जी ने फिर आगे कहा, महाराज धृतराष्ट्र, इस संग्राम में बड़ा भारी संहार होगा, क्योंकि ऐसे ही अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। देखो, दोनों संध्याओं की वेला में बिजली चमकती है, सूर्य को तिरंगे बादल ढक लेते हैं, ये ऊपर नीचे सफेद और लाल तथा बीच में काले होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते हुए दिख रहे हैं, दिन रात में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ये सब भयंकर अपशकुन सर्वनाश की सूचना देते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को नील कमल के समान रंग वाले आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण कम दिखाई देने लगा है, उसका रंग अग्नि के समान हो गया है, उससे सूचित होता है कि अनेक शूरवीर राजा और राजकुमार युद्ध में प्राण त्याग कर पृथ्वी पर शयन करेंगे। देखो, प्रतिदिन सुअर और बिलाव लड़ते हैं, उनका भयंकर नाद सुनाई पड़ता है, देव मूर्तियां कांपती हैं, हंसती हैं और खून की उल्टियां करती हैं तथा अकस्मात पसीने से तरबतर हो जाती हैं, कभी देव मूर्तियां गिर पड़ती हैं। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि उस परम साध्वी अरुंधति ने इस समय वशिष्ठ को आगे से पीछे कर लिया है, शनिश्चर रोहिणी को पीड़ा दे रहा है, चंद्रमा का मृग चिन्ह मिट सा गया है, ये सब बड़े भारी भय को बताने वाले लक्षण हैं। धृतराष्ट्र, आजकल गऊओं के पेट से गधे उत्पन्न होते हैं, घोड़ी से गऊ के बछड़े की उत्पत्ति होती है और कुत्ते गीदड़ पैदा करते हैं, चारों ओर बड़े जोर की आंधी चलती है, धूल का उड़ना बंद नहीं हो रहा है, बार बार भूकंप होता है, राहु सूर्य पर आक्रमण कर रहा है, केतु चित्रा नक्षत्र पर स्थित है, धूम केतु पुष्य नक्षत्र में स्थित है, ये महान ग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करने वाला है। मंगल वक्री होकर मघा नक्षत्र पर है, बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर है, शुक्र पूर्वा भाद्रपदा पर स्थित है, पहले 14, 15 और 16 दिनों पर अमावस्या हो चुकी है, किंतु कभी पक्ष के 13वें दिन ही अमावस्या हुई हो यह मुझे याद नहीं है। अब की बार तो एक महीने में दो पक्षों में त्रयोदशी को ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गए, इससे बढ़कर और क्या अपशकुन हो सकते हैं। इस प्रकार बिना पर्व का ग्रहण होने से दोनों ग्रह अवश्य प्रजा का संहार करेंगे। पृथ्वी हजारों राजाओं का रक्तपान करेगी। कैलाश, मंदराचल और हिमालय जैसे पर्वतों से हजारों बार घोर शब्दों की आवाजें आएंगी। इन पर्वतों के शिखर अपने आप फट जाएंगे। चारों सागर इनके अंदर उफान आएगा। पृथ्वी में हलचल होगी, मानो पृथ्वी अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हो या सागर अपनी सीमा का उल्लंघन करते हो। जन्मेजय ऐसी डरावनी भयानी बातें सुनकर धृतराष्ट्र बैठा बैठा कांपने लगने हैं। व्यास जी महाराज थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ हो गए, फिर कहने लगे, धृतराष्ट्र इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि काल सारे जगत का संहार करना चाहता है। यहां सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए अभी भी एक बार तुमको मैं मौका देता हूं, किसी प्रकार से तुम अपने कौरवों, संबंधियों, हितेशियों, मित्रों को एक बार इस युद्ध से रोक दो, उन्हें धर्मयुक्त मार्ग का उपदेश करो। धृतराष्ट्र, इतिहास में तुम्हारा भयंकर अपमान होगा। दुर्योधन के कारण से तुम कितने प्राणियों का वध का पाप लेने जा रहे हो, ये बड़ा नीच काम है। धृतराष्ट्र, व्यास की बात मानो, जिस किसी भी प्रभाव से रोकना हो तो रोक दो। चुप क्यों बैठे हो? चुप रहकर तो मेरा अप्रिय करने, मेरा अप्रिय मत करो। चुप रहकर अप्रिय मत करो, मेरा अनादर है। मैं इतने अंतर मन से तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारी कोई अच्छाई, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? किसी के भी वध को वेद ने अच्छा नहीं माना है, इससे अपना भला नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र, ये कुलधर्म अपने शरीर के समान है, जो इसका नाश करता है वह कुल धर्म से भी मनुष्य का नाश कर देता है। ये कुल धर्म भी उस मनुष्य का नाश करता है जो धर्म का नाश करता है, तो ये धर्म उसका नाश कर देता है। धृतराष्ट्र, अभी तुम राजा हो, कुल धर्म को बचाने के लिए तुम्हें यदि कुछ भी बलिदान करना पड़ना हो तो बलिदान कर, कुछ भी हो, युद्ध मत होने दो। तुम बड़े अधर्म की ओर जा रहे हो, रुक जाओ धृतराष्ट्र, हमारे कहने से आगे मत बढ़ो। तुम्हें राज्य के रूप में बड़ा अनर्थ हुआ है, ये समस्त कुल के तथा अनेकों राजाओं के विनाश का कारण बन गया। यद्यपि तुम धर्म का बहुत लोप कर चुके हो, परंतु मेरे कहने से ये अंतिम बार अपने पुत्र को धर्म के मार्ग में लगाओ। ऐसे राज्य से तुम्हें क्या लेना देना जिस राज्य पर बैठकर तुमको पाप का भागी होना पड़ता है। धर्म की रक्षा करने से तुम्हें यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। अब ऐसा करो जिससे पांडव अपना राज्य पा सके और कौरव अपने राज्य में सुख शांति का अनुभव करें। बोलो धृतराष्ट्र, चुप क्यों हो? धृतराष्ट्र ने कहा, तात, सारा संसार स्वार्थ से मोहित हो रहा है। मेरी साधारण बुद्धि अपने पुत्र प्रेम को कैसे छोड़ सकती है? मुझे दुर्योधन बहुत प्यारा लगता है, पर मेरी बुद्धि अधर्म में जाना तो नहीं चाहती है। पर क्या करूं, मेरा पुत्र मेरे वश में नहीं है, अब जो होगा सो जाएगा। व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, इतनी देर बात कहने पर भी क्या तुम्हारे अंदर पुत्र मोह है? तुम्हारी असर ही नहीं हुआ। यदि मैं इतनी बात किसी सामान्य आदमी को बोलता तो इस बात का बड़ा आदर करता, लेकिन तुम अपने पुत्र प्रेम के मोह से टस से मस नहीं हुए। बोलो, अब तुम्हारे मन में यदि और कुछ पूछने की बात है तो कहो। तुम्हारा कोई संदेह हो तो बताओ, मैं उस संदेह को दूर करूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे महाराज, संग्राम में विजय पाने वालों के जो शुभ शकुन दृष्टि गोचर हो रहे हैं, उन सबको सुनना चाहता हूं कि जो इस संग्राम में विजय होंगे उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। व्यास जी ने कहा, देखो, हवनी अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर जाती हो अथवा प्रदक्षिण क्रम से घूमती हो, उनसे धुआं नहीं निकलता हो और आहुति डालने पर उसमें पवित्र सुगंध फैल जाती हो, समझना चाहिए उस आदमी के द्वारा किए हुए यज्ञ से भावी विजय होती है। जिस पक्ष के योद्धा बड़े हर्ष के साथ मरने के लिए निकलते हैं, जिनका उत्साह दिन दूना रात चौगुना रहता है, जिन्होंने अपनी मालाएं पहनी लेकिन कुमलाई नहीं है, वे इस युद्ध रूपी महासागर में अवश्य ही विजय होते हैं। थोड़े हो या बहुत, योद्धाओं की संख्या से नहीं, योद्धाओं के उत्साह और हर्ष से विजय प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र, एक दूसरे को अच्छी तरह जानने वाले उत्साही स्त्री आदि में अनासक्त दृढ़ निश्चयी 50 वीर बहुत बड़ी सेना को रौंद डालते हैं। यदि युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले 5-7 योद्धा हों तो भी वे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः सदा सेना अधिक होने से ही विजय हो, ये अपने मन से भावना निकाल देना। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह है कि दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है, परंतु मैंने जो सूचना बताई है वो पांडवों के पक्ष में ये शुभ शकुन जा रहे हैं। धृतराष्ट्र चुप हो गया और वेदव्यास जी महाराज वहां से चले गए। ये सब सुनकर के धृतराष्ट्र विचार में पड़ गया। थोड़ी देर विचार करने के बाद संजय से पूछता है, संजय, व्यास जी चले गए, ये युद्ध प्रेमी राजा लोग पृथ्वी के लोभ से जीवन का मोह छोड़कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे की हत्या करते हैं, इन राजाओं को युद्ध में क्यों प्रवृत्त होना चाहिए? पांडव लोग तो वैसे ही धर्म पुरुष हैं और भगवान श्री कृष्ण इनको धर्म की बात बताते हैं, फिर वे क्यों युद्ध में बीच में आते हैं? ये तो अपने जंगलों में रहने के अभ्यासी हैं, क्यों अपने दादा पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने में संकोच नहीं करते हैं? क्या बात है? पृथ्वी के ऐश्वर्य की इच्छा से ये आपस में क्यों लड़ते हैं? क्या इनको यमराज के लोक की परवाह नहीं है? मैं समझता हूं कि पृथ्वी में बहुत से गुण हैं, तभी तो ये पृथ्वी चाहने के लिए लोग आपस में परिवार के संबंध को भी तोड़ लेते हैं और पृथ्वी प्राप्त करने में लगते हैं। बताओ संजय, क्या कारण है? संजय बोला, भरत श्रेष्ठ, मैं एक आपका सेवक, मेरी समझ के अनुसार आपको उत्तर देता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। ये जो युद्ध हो रहा है इसमें पृथ्वी को लेने की इच्छा नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध है। हे धृतराष्ट्र, ये युद्ध सनातन है, बहुत लंबे समय से जब से सृष्टि पैदा हुई है, एक तरफ धर्म एक तरफ अधर्म, इनका सदा ही आपस में विरोध रहा है। यहां अब जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो धर्म और अधर्म का है। महाराज क्षमा करेंगे, मुझे आगे तो कुछ नहीं कहना चाहिए, आपने पूछ ही लिया है, जितना धर्म का पालन पांडवों ने किया है ऐसे धर्म का पालन आपके पुत्रों ने नहीं किया है। आप ये पृथ्वी के गुणों को इसलिए सुनना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऐसी विशेषता है जिसके कारण से मेरा पुत्र दुर्योधन इसमें आकृष्ट हुआ है, ये बात नहीं है। मैं मानता हूं पृथ्वी के अंदर कुछ विशेषता है। पृथ्वी पर दो प्रकार के प्राणी, एक चर एक अचर। चर प्राणी के तीन भेद होते हैं, जरायुज, स्वेदज और अंडज। इन तीनों में जरायुज श्रेष्ठ है। जरायुजों में मनुष्य और पशु दो आते हैं। इनमें से कुछ ग्रामवासी और कुछ वनवासी होते हैं। ग्रामवासियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासियों में सिंह श्रेष्ठ है। अचर या स्थावरों में उद्भिज कहे जाते हैं। इनकी पांच जातियां हैं, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और त्वक्सार, माने बांस वगैरह। संपूर्ण जगत इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, इसी में ही लीन होता है। भूमि ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा है। भूमि ही अधिक काल तक स्थिर रहने वाली है। जिसका भूमि पर अधिकार है उसके वश में संपूर्ण चराचर जगत है। इसलिए इस भूमि में लोग लोभ रखते हैं, एक दूसरे का प्राणाघात करते हैं। वैशंपायन कहते हैं, एक दिन की बात है, राजा धृतराष्ट्र चिंता में डूबे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे। अपने बाएं हाथ के हथेली पर उन्होंने अपना बायां कपोल रख रखा था और नीचा मुख किए हुए थे। संजय आए और संजय ने आते ही सूचना दी, महाराज मैं संजय हूं, आपको प्रणाम करता हूं और बड़े कष्ट का एक समाचार सुनाता हूं। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या क्या हुआ संजय, बताओ संजय क्या हुआ। हे महाराज, शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में मारे गए, जो समस्त योद्धाओं के शिरोमणि थे, धनुर्धारियों के संघारे थे, वे कौरवों के पिता में आज बाण शैया पर सो रहे हैं। महाराज, जिन महारथी ने काशीपुर में अकेले ही एकमात्र रथ की सहायता से वहां जुटे हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था, जो नीडर होकर युद्ध के लिए परशुराम जी को भी ललकार कर भिड़ गए थे, साक्षात परशुराम जी जिन्हें मार नहीं सके थे, वे ही आज शिखंडी के हाथों से मारे गए। देखो, सरसैया पर गिरना मरने के समान था। हे महाराज, जो शूरता में इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के समान, जिन्होंने हजारों बाणों की वर्षा की, 10 दिन के अंदर 1 अरब सेना का संहार किया, वे ही इस समय आज आंधी के उखड़े हुए वृक्ष के भांति पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। हे महाराज, व्यास जी ने मुझे कहा था जाते जाते कि समय समय पर धृतराष्ट्र को तुम सावधान करते रहना, इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भीष्म जी कदापि ऐसी दशा के योग्य नहीं थे। आपने आज भीष्म का घोर अपमान करवाया। भीष्म तो उसके लायक थे, वह महलों में विराजमान रहते, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करते और उनके शरीर को आपके कंधों के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाते। भी आज रणभूमि में मुर्दों के साथ पड़े हुए हैं। महाराज, भीष्म की दशा कहते सुनते मेरा हृदय फट रहा है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, ऐसा तो नहीं हो सकता। भीष्म के ऊपर तो मेरे पुत्र की पूरी नजर थी। नहीं संजय, पांडवों ने कोई गलत समाचार भेजकर मेरे मन के अंदर उल्लास और विजय की आशा को तोड़ने का षड्यंत्र किया है। संजय, अच्छी तरह से देख के बताओ, तुमको वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी है, भीष्म नहीं बच सकते ना, देख के बताओ। संजय बोला, महाराज वेदव्यास जी की दिव्य दृष्टि के बाद मेरे पास कौन आकर क्या बात कर सकता है, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, मैं दिव्य दृष्टि से देख करके कहता हूं। तो संजय, एक शिखंडी के बाणों से मारे गए। संजय, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। जिस समय वे युद्ध के लिए आगे आगे चल रहे थे, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय उनके पीछे कौन कौन थे, आगे कौन थे, बगल में कौन थे, दाएं कौन थे? उनके धनुष और बाण तो बड़े उग्र थे, रथ भी बड़ा श्रेष्ठ था। वे अपने बाणों से प्रतिदिन शत्रुओं के मस्तक काटते थे। वे काल की अग्नि के समान दुर्धर्ष थे। उन्हें युद्ध के लिए देखकर पांडवों की बहुत बड़ी सेना कांप उठती थी। वे 10 दिन से लगातार पांडव सेना का संहार कर रहे थे। हाय हाय, ऐसा दुष्कर कार्य करने करके वे आज सूर्य के समान अस्त हो गए। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य उनके पास ही थे, तब भी उनकी मृत्यु हो गई। जिन्हें देवता भी दबा नहीं सकते थे, जो अतिरथी वीर थे, उन्हें पांचाल देश का नपुंसक शिखंडी कैसे मार गिराया है? मेरे पक्ष के किन किन वीरों ने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा? दुर्योधन की आज्ञा से कौन कौन वीर उन्हें चारों ओर से घिरे हुए थे, बताओ। संजय, देखा मेरा हृदय कैसा पत्थर का बना हुआ है, मेरा हृदय कितना कठोर है। भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर के भी देखो, और समाचार सुनना चाहता हूं, मेरा हृदय फट नहीं गया। भीष्म जी की सत्य बुद्धि और नीति आदि सद्गुणों की था कोई पा नहीं सकता था, वे युद्ध में कैसे मारे गए, बताओ। संजय, बताओ उस समय पांडवों के साथ भीष्म का कैसा युद्ध हुआ? आए, उनके मरने से मेरे पुत्रों की सेनापति और पुत्र से हीन स्त्री के समान असहाय हो गई। हाँ, उनके मरने से मेरे पुत्रों की सेना वैसे ही असहाय हो गई जैसे पति और पुत्र के मरने से स्त्री असहाय हो जाती है। हमारे पिता भीष्म संसार में प्रसिद्ध धर्मात्मा पराक्रमी थे, उन्हें मरवा कर अब हमारे जीने के लिए कौन सा सहारा रह गया? मैं समझता हूं नदी के पार जाने की इच्छा वाले मनुष्य नाव को पानी में डूबी देखकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार भीष्म की मृत्यु से मेरे पुत्र भी शोक में डूब गए होंगे। जान पड़ता है धैर्य अथवा त्याग के बल से किसी का मृत्यु से छुटकारा नहीं हो सकता। मैं आज तक समझता था कि सब संसार मरने वाला है, पर मेरे पिता में कभी मरने वाले नहीं है। आज मेरा ये भ्रम भी टूट गया। काल बड़ा बलवान है, संपूर्ण जगत में कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे भीष्म जी से बड़ी आशा थी। उनको रणभूमि में गिरा देख अर्जुन ने दुर्योधन ने क्या विचार किया? कर्ण, शकुनी और दुशासन ने क्या किया, क्या कहा? भीष्म के अतिरिक्त और किन किन राजाओं की हार जीत हुई? कौन कौन बाणों के निशाने बनाकर मार गिराए? संजय, मैं दुर्योधन के किए हुए दुखदायी कर्मों को सुनना चाहता हूं। उस घोर संग्राम में जो जो घटनाएं हुई वो मुझे सुनाओ। मंद बुद्धि दुर्योधन की मूर्खता के कारण जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटना हुई हो तथा विजय की इच्छा से भीष्म जी ने जो जो तेजस्वितापूर्ण कार्य किए हो वो सब मुझे सुनाओ। साथ में ये भी बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना में किस तरह युद्ध हुआ, किस क्रम से, किस किस समय, कौन कौन सा कार्य किस किस के द्वारा घटित हुआ, ये हमको बताओ। संजय ने कहा, महाराज दुखी हृदय से आपने सब प्रश्न किया है तो दुखी हृदय से ही मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप बार बार मंद बुद्धि मूर्ख दुर्योधन का जो शब्द का प्रयोग करते हैं इसमें संशोधन कीजिए। सारा दोष दुर्योधन के माथे नहीं मर सकते क्योंकि दुर्योधन आपका पुत्र है। दुर्योधन की प्रत्येक षड्यंत्र की बातें आपको मालूम है, फिर भी आपने दुर्योधन को मना नहीं किया, वो दोष आप पर भी लागू होता है। जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा है उसे उस पाप का बोझा दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। सारा दोष आपका है। बुद्धिमान पांडव अपने साथ किए गए कपट और अपमान को अच्छी तरह समझते थे, तब भी उन्होंने केवल आपकी ओर देखा, हस्तिनापुर की ओर देखा, वन का अपने मंत्रियों से चिरकाल तक वन का सेवन किया। अब जिनकी कृपा से मुझे भूत भविष्यत वर्तमान का ज्ञान है तथा आकाश में विचरना और दिव्य दृष्टि आदि प्राप्त हुए हैं, उन पराशर नंदन भगवान व्यास को अनेक बार प्रणाम करके भरतवंशियों के रोमांचकारी और अद्भुत संग्राम का विस्तार से वर्णन करता हूं। हे महाराज आप सुनिए। जब दोनों ओर की सेनाएं तैयार होकर व्यूह के आकार में खड़ी हो गईं, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन भीष्म जी की रक्षा के लिए जो रथ नियत है उन्हें तुरंत यहां उपस्थित करो। इस युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर हम लोगों के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। शुद्ध हृदय वाले पिता मैंने पहले ही कह रखा है कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा क्योंकि वो पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ है। अतः मेरा विचार है कि शिखंडी के हाथ से भीष्म जी को बचाने का विशेष प्रयत्न होना चाहिए। जिस दिशा में भीष्म हो उस दिशा में शिखंडी को हर प्रकार से रोकने का प्रयास करना चाहिए। मेरे सभी सैनिक शिखंडी का वध करने के लिए तैयार रहे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो वीर सब प्रकार के अस्त्र संचालन में कुशल है वे पितामह की रक्षा में रहे। देखो अर्जुन के रथ के बाएं चक्र की युधामन्यु रक्षा कर रहा है, दाहिने चक्र की उत्तमौजा रक्षा कर रहा है। अर्जुन के दो रक्षक और हैं और अर्जुन स्वयं शिखंडी की रक्षा में तैयार खड़ा है। अतः तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे अर्जुन के द्वारा सुरक्षित और भीम से उपेक्षित शिखंडी पितामह का वध न कर सके। विचार कर, अर्जुन पितामह बोलता है और उस पितामह को मारने वाले शिखंडी को बचा बचा कर अपने पराक्रम से सुरक्षित रखकर भीष्म को मारना चाहता है। देख लिया? फिर कहते हैं ये पांडव बड़े धर्म पुरुष हैं, पांडव युद्ध नहीं चाहते हैं, पांडव शांति चाहते हैं। देख ली शांति? ऐसी बात ही बात। तदनंतर रात बीती, सूर्योदय हुआ, आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दिखाई दी। खड़े हुए योद्धाओं के हाथ में धनुष, रिष्टि, तलवार, गदा, शक्ति, तोमर और बड़े बड़े चमकीले शस्त्र शोभा दे रहे थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में हाथी, पैदल, रथी और घोड़े शत्रुओं को फंदे में फंसाने के लिए व्यूहबद्ध होकर खड़े थे। शकुनी एक तरफ, शल्य एक तरफ, जयद्रथ एक तरफ, अवंतिराज, विंद और अनुविंद, केकय नरेश, कंबोजराज, सुदक्षिण, कलिंग नरेश, सुतायुध, राजा जयत्सेन, बृहद्बल और कृतवर्मा, ये 10 वीर एक एक अक्षोणी सेना के नायक थे। इनकी सेवा और भी बहुत सी महारथी, राजा और राजकुमार दुर्योधन के अधीन हो युद्ध में अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े थे। इनके अतिरिक्त 11वीं महासेना दुर्योधन की थी, वह सब सेनाओं के आगे थी। उसके अधिनायक थे शांतनु नंदन भीष्म जी। महाराज, उनके सिर पर सफेद पगड़ी थी, शरीर पर सफेद कवच था और रथ के घोड़े भी सफेद थे। उस समय अपनी श्वेत कांति से भी चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले सृंजय वंश के वीर तथा धृष्टद्युम्न आदि पांचाल वीर भयभीत हो उठे थे। उनका मुख तेज बहुत बड़े विजय की सूचना देने वाला था। इस प्रकार 11 अक्षौणी सेनाएं आपको आपकी ओर से खड़ी हुई थी। राजन, कौरवों की इतनी बड़ी सेना का ऐसा संगठन मैंने कभी न देखा न कभी सुना था। भीष्म जी और द्रोणाचार्य प्रतिदिन सवेरे उठकर यही मनाया करते थे, पांडवों की जय हो। अब आप विचार कीजिए, तो भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे युद्ध के समय पूर्ण शक्ति के साथ पांडवों के विरुद्ध में युद्ध करते थे। पांडवों को आशीर्वाद देते हैं लेकिन युद्ध में पांडवों के विरोध में बल दिखाते हैं। उस दिन भीष्म जी ने सब राजाओं को अपने पास बुलाकर कहा, क्षत्रियो, आप लोगों के लिए स्वर्ग में जाने का ये युद्ध रूपी महान दरवाजा खुल गया है। इसके द्वारा आप इंद्रलोक, ब्रह्मलोक में जा सकते हो। यही आपका सनातन मार्ग है, इसी का आपके पूर्वजनों भी अनुसरण किया है। रोग से घर में पड़े पड़े प्राण निकलना क्षत्रिय के लिए अधर्म माना गया है। युद्ध में जो इसकी मृत्यु होती है वही क्षत्रिय श्रेष्ठ है, यही सनातन धर्म है। भीष्म जी की बातें सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी। सभी राजा बढ़िया बढ़िया रथों से अपने सेना की शोभा बढ़ाते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े। केवल एक कारण अपने मंत्री और बंधुओं बांधुओं सहित रह गया, वो युद्ध में नहीं गया। भीष्म जी ने पहले ही कह दिया, कर्ण शस्त्र नीचे डालो, जाके बैठ जाओ। भीष्म जी ने उसके अस्त्र शस्त्र रखवा दिए थे। समस्त कौरव सेना के सेनापति भीष्म जी रथ पर बैठे हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। उनकी रथ की ध्वजा पर विशाल ताड़ और 5 तारों के चिन्ह बने हुए थे। आपके पक्ष में जितने महान धनुर्धर राजा थे वे सब शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा के अनुसार युद्ध के लिए तैयार हो गए। आचार्य द्रोण की जो ध्वजा फहरा रहे थे उसमें सोने की वेदी, कमंडलू, धनुष के चिन्ह थे। कृपाचार्य बहुमूल्य रथ पर बैठकर वृषभ के चिन्ह वाली ध्वजा फहराते हुए चल रहे थे। इस प्रकार आपके पुत्रों की 11 अक्षौणी सेना यमुना में मिली हुई गंगा के समान दिखाई दे रही थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भीष्म जी, तू मनुष्य, देवता, गंधर्व और असुरों द्वारा की जाने वाली व्यूह रचना को जानते थे। जब उन्होंने मेरी अक्षौहिणी सेना की व्यूह रचना की तब पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी थोड़ी सी सेना से कैसा व्यूह बनाया था। संजय ने कहा, महाराज आपकी सेना को व्यू रचना पूर्वक सुसज्जित देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन महर्षि बृहस्पति के वचन से ये बात ज्ञात होती है कि शत्रु की अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे समेट कर थोड़ी दूर में रखकर युद्ध करना चाहिए, और यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छा अनुसार फैलाकर लड़ना चाहिए। जब थोड़ी सेना को अधिक सेना के साथ युद्ध करना पड़े तो उसे सूचीमुख नाम की व्यू रचना करनी चाहिए। सूचीमुख, सूचीमुख माने सुई हुई सुई, पतली होकर के पीछे थोड़ी मोटी होती है। सूचीमुख रचना के अनुसार व्यू रचना करनी चाहिए। हम लोगों की सेना शत्रुओं के मुकाबले में बहुत थोड़ी है, इसलिए तुम व्यू रचना करना। अर्जुन ने बड़े उत्साह और आदर के साथ युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मैं आपके लिए वज्र नामक दुर्भेद्य व्यूह की रचना करता हूँ। ये इंद्र का बताया हुआ दुर्जय व्यूह है, जिनका वेग वायु के समान प्रबल और शत्रुओं के लिए दुस्सह होता है। वे योद्धाओं में अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूह में हम लोगों को आगे रखकर युद्ध करेंगे। उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव भयभीत होकर इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह को देखकर क्षुद्र मृग भाग जाते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हमारी विशाल सेना देखकर क्या पांडवों के मन में भय पैदा नहीं हुआ? संजय, संजय कहने लगे, महाराज आप भय की बात करते हैं, वहां तो इतना उत्साह है, इतना जबरदस्त उनके अंदर युद्ध करने का जोश है, वे तरह तरह की व्यूह रचना में कुशल, सेना का बड़प्पन उन पर कोई प्रभावी नहीं हुआ, और वो वज्र व्यू करके अर्जुन शीघ्र ही शत्रुओं की ओर बढ़ा। कौरवों को अपनी ओर आते देख पांडव सेना ने जल से भरी हुई गंगा के समान धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, धृष्टकेतु ये उस सेना के आगे चल रहे थे। इनके पीछे रहकर राजा विराट अपने भाई पुत्र और एक अक्षौणी सेना के साथ रक्षा कर रहे थे। नकुल और सहदेव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर उनके रथ के पहिए की रक्षा करते थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभाग के रक्षक थे। इन सब के पीछे शिखंडी चलता था जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्म का विनाश करने के लिए तैयार था। अर्जुन के पीछे महाबली सात्यकी था तथा युधामन्यु और उत्तमौजा उनके चक्रों की रक्षा करते थे। कैकेयी, धृष्टकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की रक्षा में थे। अर्जुन ने जिसकी रचना की थी वे वज्रव्यूह भय की आशंका से बिल्कुल शून्य था। सबके मुख बड़े उत्साह में बड़े थे, देखने में बड़े भयानक लगते थे, बड़ा उनमें जोश था। वीरों के धनुष इसमें बिजली के समान चमक रहे थे और स्वयं अर्जुन गांडीव धनुष हाथ में लेकर इसकी रक्षा कर रहे थे। उसी का आश्रय लेकर पांडव लोग तुम्हारी सेना के मुकाबले में पूर्ण रूप से डटे रहे। पांडवों से सुरक्षित वह व्यू मानव जगत के लिए सर्वथा अजेय था। इतने में सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक संध्या वंदन करने लगे। उस समय आकाश में बादल नहीं थे तो भी मेघों की सी गर्जना हुई, हवा के साथ बूंदें गिरने लगी, चारों ओर से प्रचंड आंधी उठी और नीचे की ओर कंकर बरसाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत में अंधेरा सा छा गया। पूर्व दिशा की ओर बड़ा भारी उल्कापात हुआ। उल्का उदय होते ही सूर्य से टकरा गई और बड़े जोर से आवाज करती हुई पृथ्वी में विलीन हो गई। संध्या वंदन के पश्चात जब जब सैनिक तैयार होने लगे तो सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई तथा पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई कांपने और फटने लगी। सब दिशाओं में बारंबार वज्रपात होने लगा। इस प्रकार युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांडव आपके पुत्र दुर्योधन की सेना का सामना करने के लिए व्यूह रचना करके भीमसेन को आगे किए खड़ी थी। उस समय गदाधारी भीम को सामने देखकर हमारे योद्धाओं का मुंह सूख गया और उनका हृदय कांपने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूर्योदय होने पर भीष्म की अधिनायकता में रहने वाले मेरे पक्ष के वीरों और भीमसेन के सेनापतित्व में उपस्थित पांडव पक्ष के सैनिकों में पहले किन्होंने युद्ध की इच्छा से हर्ष प्रकट किया था? संजय। संजय ने कहा, हे नरेंद्र, दोनों ही सेनाओं की समान अवस्था थी। जब दोनों एक दूसरे के पास आ गईं, तो दोनों ही बड़ी प्रसन्न थी। हाथी घोड़े रथों से भरी हुई सेना, बड़ी विचित्र सेनाएं बड़ी विचित्र स्वभाव को प्राप्त हो रही थी। कौरव सेना का मुख पश्चिम की ओर और पांडव पूर्वाभिमुख होकर खड़े थे। कौरवों की सेना दैत्यराज की सेना के समान थी और पांडवों की सेना देवताओं के समान लग रही थी। पांडवों के पीछे हवा चलने लगी और कौरवों के पीठ भाग में मांसाहारी पशु कोलाहल करने लगे। इसी में ही आप समझ सकते हो कैसे कैसे दोनों के अपशकुन हुए। हे भारत, आपकी सेना में 1,00,000 से अधिक हाथी, प्रत्येक हाथी के साथ 100-100 रथ, एक एक रथ के साथ 100-100 घोड़े और प्रत्येक घोड़े के साथ 10-10 धनुर्धर सैनिक थे और एक एक धनुर्धर के साथ 10-10 ढाल वाले थे। इस प्रकार भीष्म जी ने आपकी सेना का व्यूह बनाया था। प्रतिदिन व्यूह बदलते रहते थे। किसी दिन मानव व्यूह रचते थे, तो किसी दिन देव व्यूह रचते थे, किसी दिन गांधर्व व्यूह रचते थे, किसी दिन आसुर व्यूह रचते थे। आपकी सेना के व्यूह में महारथी सैनिकों की भरमार थी। वह समुद्र के समान गर्जना करती थी। राजन, कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर है तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं है, तो भी मेरा ये विश्वास है कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं। अब आगे का प्रसंग है युधिष्ठिर और अर्जुन की जो बातचीत होती है। अर्जुन को दुर्गा का सपना आता है, सपने में वरदान प्राप्त करते हैं। वो संजय आगे की कथा को बाद में कहते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।